प्रकार से सुहास करता है, अर्जुन तो बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त करते 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 आगे जाकर के सुख दुख उसको समान हो जाते हैं, और जब आगे जाकर समान हो जाते हैं तो उसको धीर पुरुष कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। इसको ज्ञान है तब अपने धीर है, तो जिस धीर के विषय के वहां ये खाकी इसे गीता की दूसरी अध्याय के 13 के श्लोक में धीर सत्र ने मुझे थी, ये जो है वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता है, तो वही यहाँ धीर है। तो मोह को प्राप्त नहीं होता तो धीर किसको प्राप्त होता है, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग बन जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग बन जाता है। तो उच्च कोटि का जो साधक है उसको भी धीर कहा जा सकता है, सिद्ध तो धीर है ही। तो यहाँ ये जो विशेषण दिया गया 15 श्लोक के बीच के वहाँ कि उस धीर पुरुष को संसार के ये जो पदार्थ है जिसे भोग है ये व्यथित नहीं कर सकते, विचलित नहीं कर सकते है, तो वह धीर पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग समझा जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के योग को भी धीर कहते हैं, और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता वो तो धीर ही। तो इसलिए 13 के श्लोक के बीच के माँ जो धीर पुरुष की बात कही वही धीर पुरुष यहाँ जो की 15 के श्लोक के बीच के माँ, तो वो धीर बनता कैसे है कि तीक्षा के माने सैन्य शक्ति के प्रभाव से, तो प्रथम उसको समझो की तीक्ष्ण होना होता है, तीक्ष्ण के बाद में धीर हो जाता है, धीर होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है कि वो परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन गया। प्रकार से प्रतीक्षा से माने सैन्य शक्ति से परमात्मा की प्राप्ति का पात्र कैसे बन जाए, तो वो सब सुनाएगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय।
महात्माओं के प्रभाव की बात करने के लिए स्वामी जी ने भयान प्रेरणा करी, किंतु महापुरुषों का जो प्रभाव जो गुण है वो तो मन में उतना ही है तो अपरिमित, किंतु एक प्रकार से जितना हम लोग मानते हैं उससे भी और ज्यादा है। हम लोगों की जो मानता है वो तो परिमित होती है और वास्तव में वो अपरिमित है। दूसरी बात यह है कि महात्माओं का जो प्रभाव को महात्मा ही जाने, उनके गुण और प्रभाव की महिमा कौन गा सके और कौन चर्चा कर सके। महात्मा को महात्मा हम लोग समझ ले हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। उनके गुण और प्रभाव को देख देख कर करके मन में आनंद की लहरा उठ सकती है। जब ये मालूम हो जाए कि ये महात्मा है तो कुछ समय के बीच के वहाँ मनुष्य को बहुत भारी प्रसन्नता और शांति स्वाभाविक ही हो सकती। जब ईश्वर में ईश्वरपन का ज्ञान हो जाता है तो उसका एक जीवन बदल जाता है और भाव बदल जाता है। इसी प्रकार से महात्माओं को महात्मा समझने से और उसकी एक अलौकिक दशा हो जाती है। महात्मा पुरुषों के दर्शन में आनंद, वार्तालाप में आनंद, उनकी आज्ञा पालने में आनंद, सेवा करने में आनंद ही आनंद। उनके दर्शन करने से वाणी गदगद हो जाती है, शरीर में रोमांच होने लगते हैं, चित्त में प्रसन्नता होती है। जैसे भगवान के दर्शन करने से आंसुपात होते हैं, रोमांच होते हैं और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ईश्वर को एक महान पुरुष समझ करके तो ये सब बातें होती है, ये बात समझ में आती है कि ईश्वर बड़े प्रेमी है, बड़े दयालु है, बहुत ही सुहृद है और ईश्वर के समान कोई नहीं। ईश्वर के जो गुण है और ईश्वर का जो प्रभाव है, उनका जो तत्व है, रहस्य है, उसको जब मनुष्य समझता है तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता। इसी प्रकार से जो महात्मा जो पुरुष है, महापुरुष जो है, उनके भी दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, सफर से बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही शांति मिलती है। प्रसन्न करने वाला पुरुष अपने भाग की प्रशंसा करता है, अपना अहोभाग समझता है। महापुरुषों का जो मिलना है वो अमोघ होता है, वो खाली नहीं जाता, और उनसे जो लाभ होता है वो प्रत्यक्ष लाभ होता है। उनके दर्शन से नेत्र खिल उठते हैं, सफर से शरीर में रोमांच हो जाते हैं, उनकी वाणी अमृत के समान प्यारी लगती है कानों के लिए, उनके वहां क्षमा, दया, शांति, समता आदि अनेक गुण होते हैं और वे गुण एक एक गुण जो है सो अपार होते हैं। और जो बात असंभव से है वो भी एक प्रकार से उनके लिए कोई असंभव नहीं है। जैसे एक गंगा अपने सबका उद्धार कर सकती है, एक ही महात्मा सबका उद्धार कर सकता है। एक दीपक से चाहे मनुष्य झाड़ू दीपक प्रज्वलित कर सकता है, ऐसे एक महात्मा के वजह से सक्रिय झाड़ू महात्मा हो सकती है। उनका जो दूसरों पर असर पड़ता है ये उनका प्रभाव है। ऐसे महात्मा पुरुष असंभव को भी संभव कर सकते हैं, ये भी उनका प्रभाव है। उनमें लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के प्रभाव रहते हैं। लौकिक ये कि संसार के वहां जो चमत्कार है, संसार के वहां जो असंभव सी बात उनमें घट जाती है वो लौकिक प्रभाव। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन पहाड़ को उठा दिया, राक्षसों को मार डाला इत्यादि, ये जो भगवान के विषम प्रभाव की बात आती है ये लौकिक प्रभाव। दूसरा भी एक कोई तेजस्वी पुरुष, बलवान पुरुष ऐसा कर सकता है। अलौकिक प्रभाव भगवान का वह है कि दूसरा आदमी कर नहीं सकता। जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बाल और बच्चों के रूप में अनेक रूप धारण कर लिए और बच्चों के द्वारा गायों का उद्धार किया और ग्वाल बाल बनकर के उनकी माताओं का उद्धार किया, तो ये कोई एक आदमी नहीं कर सकता। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से लौट करके आए और सबसे जब एक साथ मिले तो आपने अपने अनेक रूप धारण कर लिए और धारण करके उन लोगों का कल्याण कर दिया। तो दूसरों का जो कल्याण कर देना ये अलौकिक बात है। एक सत्यवादी पुरुष है, उनमें भी इतना प्रभाव रहता है कि सत्य प्रतिष्ठा एवं क्रिया पदार्थ से तुम, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर उसके वचन की क्रिया फल वाली हो जाती है। तो ये एक वाणी का प्रभाव है, सत्य का प्रभाव है। इसी प्रकार से थी जो कभी हिंसा नहीं करता है उनके लिए बताया है कि अहिंसा प्रतिष्ठा हम तत्सने दो वैर त्याग है,
अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उसके नजदीक में दूसरे आदमी वैर का त्याग करते थे। दूसरी बात यह कि जो परस्पर के बीच के वहां स्वाभाविक ही जिनका बैर है उनका भी वो बैर उत्तरकार के लिए शांत हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 के बीच के वहां अज्ञान के कारण अहंकार बढ़ गया था और आसुरों के साथ के बीच के वहां विजय पाकर के उनके हृदय में ये अभिमान बढ़ गया था कि हम लोगों के प्रभाव से भी देवताओं की विजय हुई। और जब यक्ष के रूप में भगवान प्रकट होकर के ये बात प्रत्यक्ष दिखला दी कि अग्नि के भीतर के में जो शक्ति है वो अग्नि की नहीं है, भगवान कहते हैं कि वो मेरी शक्ति है। वायु के में जो शक्ति है वो मेरी शक्ति, तो भगवान ने ये अपना प्रभाव दिखला करके ये बात प्रमाणित कर दी कि भगवान ने अपना अग्नि से तेज खा लिया तो अग्नि तिनके को भी नहीं जला सका। वायु से अपने बल का आकर्षित कर लिया तो वायु एक तिनके को भी नहीं उड़ा सका। तो ये भगवान का प्रभाव, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि यदि यद विभूति मत्स्वपुन श्री मधुर जी, यदि यद विभूति मत्स्वपुन श्री मधुर जी तुम्हें हुआ तत्त देवावगत संतो मम तेजोंस संभवम। यदि यदि विभूति मत सप्तम, जो जो विभूति वाली कांति वाली बल वाली चीज है वो सब मेरे एक तेज के अंश का प्रागट सम, माने एक मेरे तेज का अंश का प्रादुर्भाव है। जो जो भी संसार में विभूति वाली चीज है, जो भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के में अपनी जो विभूतियां बतलाई है वो सब की सब विभूतियां जो है मिल करके भगवान का जो प्रभाव है उसका एक अंश सु है। तो ये भगवान के प्रभाव की बात आपको बतलाई। इसी प्रकार से थी महात्मा पुरुषों का जो प्रभाव है वो अलौकिक है। जब एक यम और नियमों का पालन करने से उसमें अलौकिक बातें आ जाती है तो फिर महापुरुषों की तो बात ही क्या है, दूसरों पर भी उनका असर होता है प्रभाव का। तो महापुरुषों का संग करने से, दर्शन करने से, वार्तालाप करने से, उनके पास बात करने से दूसरे मनुष्य पर उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रभाव पड़ता है, सूर्य का प्रभाव पड़ता है कि सूर्य के मन जो गर्मी और प्रकाश है ये सब पर ही प्रभाव पड़ता है। किंतु महात्मा जो पुरुष है उनमें श्रद्धा और विश्वास होने से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे पड़ता है सामान्य भाव से और वो पड़ता है विशेष रूप से। जैसे अग्नि देवता है ये हमारे कमरे के मां रहते हुए भी जब राक्षस ढकी हुई रहती है तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, सामान्य प्रभाव पड़ता है, कमरा गर्म हो जाता है। किंतु ये दिखता नहीं, कोई नया आदमी आता है तो कमरा गर्म क्यों है। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि इसमें ढकी हुई आग है, तो आग से जो लाभ उठाना होता है वो उठा सकता है, उस अग्नि से रोशनी भी वो चाहो तो कर सकता है, और रोटी पकवा कर भी खा सकता है अग्नि का ज्ञान होने से। और बिना ज्ञान के साधारण लाभ होता है, ज्ञान होने से उससे विशेष लाभ मनुष्य उठा सकता है। और उस अग्नि के बीच के वहां श्रद्धा होती है, विश्वास, तो अग्नि साक्षात देवता है ऐसा समझ करके के उनमें यह करके के मनुष्य अपनी कामना की सिद्धि कर सकता है। और यदि निष्काम भाव से थी अग्नि उत्तराधि करे तो एक प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो इससे यह बात सिद्ध हुई कि अग्नि जो है बिना ज्ञान के भी समान लाभ देती है, यानी हम लोग अग्नि से साधारण लाभ तो हमको बिना ज्ञान भी हम उठा सकते हैं, और ज्ञान होने से विशेष लाभ उठा सकते हैं, और श्रद्धा होने से उससे भी विशेष उठा सकते हैं।
महात्मा ने साधारण लाभ किया, शेष लाभ किया,
और अपने निष्काम भाव से संबंध होने पर हम अग्नि देवता से मुक्ति तक का लाभ उठा सकते। इसी प्रकार से थी महात्मा जो पुरुष है बिना उनके जाने भी उनसे साधारण लाभ होता है। साधारण लाभ कि जैसे अग्नि जहाँ रहता है तो एक प्रकार से थी इतना प्रभाव तो अग्नि का पड़ ही जाता है कि वो कमरा गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से थी महात्मा जो पुरुष है उनके वहां जो गुण रहते हैं उनके द्वारा होने वाली जो क्रिया जिसको हम आचरण कहते हैं, तो महात्माओं के आचरणों के बीच के वहां भी शिक्षा भरी हुई रहती है, और उनके व्यवहार से ही उन्हें के वहां जो गुण है वो प्रकट होते रहते हैं। गुण और आचरणों को देख करके कर उनका एक स्वाभाविक असर होता है, चाहे उसको महात्मा न समझे, उनके अच्छे आचरणों को देख करके मनुष्य के ऊपर स्वाभाविक ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई महात्मा पुरुष हम लोगों के साथ के मां एक त्याग का व्यवहार करता है, हम लोगों के हित का व्यवहार करता है, अपना जो तन है मन है धन है या जो कुछ भी अपना तन मन धन जन एक प्रकार से हमारी सेवा के काम में लगाता है, तो हमारे दिल में भी ये भाव पैदा होता है ये तो बड़ा अच्छा सुंदर व्यवहार है, तो हम भी दूसरों से ऐसा ही व्यवहार करें, एक दूसरे के त्याग पूर्वक व्यवहार को देख करके सत्य व्यवहार को देख करके देखने वाले व्यक्ति के हृदय के मां ये भाव पैदा होता है कि मैं भी ऐसा व्यवहार करूं कि ये व्यवहार तो बड़ा अच्छा है सुंदर है। जिस व्यवहार को वो श्रेष्ठ और सुंदर अच्छा समझता है तो उस पर छाप पड़ती है, तो वो भी इस प्रकार से चाहता है कि मैं भी अच्छा व्यवहार करूं। तो ये तो एक समान एक प्रकार से लाभ है, मैंने उसको महात्मा बिना समझे भी कि किसी भी मनुष्य के हम अच्छे व्यवहार को देखते हैं तो उससे हमारे को शिक्षा मिलती है, उसके संस्कार हमारे हृदय के मन जम जाते हैं, और ये भाव पैदा होता है कि बड़ा अच्छा व्यवहार है, ऐसा ही व्यवहार सब कोई को करना चाहिए, और काम पड़ने पर वह भी ऐसा करता है। तो ये एक प्रकार से समान लाभ है, महात्मा का ज्ञान हुए बिना भी ये लाभ हो सकता है। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि भाई ये महात्मा पुरुष है महापुरुष है, तो इतना ज्ञान होने के साथ उसके दिल में ये भाव पैदा होता है कि मैं भी महात्मा बनूं, ये महात्मा है तो मैं क्यों नहीं महात्मा बन सकता हूं, तो उसकी इच्छा होती है, और इच्छा की पूर्ति के लिए वो प्रयत्न भी करता है और महात्मा कैसे मैं बनूं इसके लिए साधन भी पूछता है और ज्ञान होने के साथ ही उसका मन एकदम बदल जाता है, उसका थोड़ा सा जीवन बदल जाता है। दर्शन करने पर बिना ज्ञान के मामूली लाभ होता है और दर्शन होने के बाद कोई संकेत करता है, कहता है कि ये तो एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो इस तरह सुनने से भी किसी एक प्रकार से लाभ होता है। उसको ये साधारण ज्ञान हुआ कि एक प्रकार से ये एक अच्छे पुरुष हैं, उनकी पहले हम महिमा सुन चुके हैं और फिर अचानक उनसे भेंट होती है अज्ञात अवस्था में, तब तो विशेष असर नहीं होता। जब बात चलने पर ये ज्ञान हो जाता है कि जिस महात्मा की हम खोज में है वह यही है, तो उस समय के बीच के मनुष्य का एकदम भाव बदल जाता है, जीवन सा बदल जाता है। ज्ञान होने के साथ ही एक प्रकार से विशेष लाभ होता है और ज्ञान होने के बाद जब उनके बीच के मां श्रद्धा होती है, जब विशेष ज्ञान हो जाता है तब उसके मां श्रद्धा होती है, विश्वास होता है और प्रेम होता है, तब तो ऐसा भाव होता है कि मानो मैं हर वक्त के साथ रहूं और पूरा लाभ उठा करके ही इनसे अलग हूं। जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है और परम श्रद्धा हो जाती है, तो फिर एक प्रकार से उनका वो संग भी नहीं छोड़ता, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। उसके संकेत को देख देख कर करके और उसके पालन करने की इच्छा होती है, उनके मन के भाव को जान करके उसका अनुकरण करना चाहता है और उनका जो संकेत है उसको पा करके बहुत हर्षित होता है, मुग्ध हो जाता है और अपने को एक प्रकार से ये समझता है कि भी मेरा अहोभाग है। जब उस महात्मा के साथ में प्रेम का व्यवहार होने लगता है, तब तो एक प्रकार से वो इतना मुग्ध हो जाता है कि अपने को संभाल नहीं सकता। श्रद्धा होने के बाद उसके वहां प्रेम होता है और प्रेम होने से ही उसकी एक अवस्था बदल जाती है कि मैं कहां तुच्छ मनुष्य और आप कितने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो मुझ तुझ के साथ के मां ये इतना प्रेम करते हैं, तो उनकी सुरता को देख देख करके कि वो क्षण क्षण के बीच के मां मुग्ध होने लगता है। महात्मा के तत्व रहस्य को जब तक नहीं समझता तब तक महात्मा से साधारण लाभ उठा सकता है। जब उनके तत्व रहस्य को समझ जाता है तो फिर ये समझता है कि इनसे मैं विशेष लाभ उठाऊं, और विशेष लाभ वही है कि परमात्मा की प्राप्ति। फिर दूसरी चीज की तो इच्छा ही नहीं रखता, वो तो समझता है कि भाई और चीजों की जो कामना करनी इच्छा करनी वो तो मामूली बात है। यदि मनुष्य को कोई महान रत्न मिल जाए तो क्या वे फिर उस रत्न से हीरे से या निम्न श्रेणी का काम थोड़ा ही लेगा, वो तो उच्च से उच्च कोटि का काम लेगा। नारायण 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 नारायण।